ہم تو اپنے تمام عز و اقارب کے خادم ہیں لیکن کوئی ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔
شرمندہ نہ کریں کیانی صاحب، آپ کی خیریت لیتے رہتے ہیں، شکریہ۔
حقیقت میں جب حاجیہ صاحبہ نے فون کیا تھا تو میں داریوش صاحب کا منتظر تھا، لیکن شکر ہے کہ توفیق شامل حال ہوئی اور آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں حاضر ہوں خدمت میں۔
اصل میں قصہ تو طولانی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ کہاں سے شروع کروں۔ کچھ سال پہلے ہم دونوں نے ایک فیکٹری کھولنے کی کوشش کی، البتہ نہیں پتا کہ آپ کو علم ہے کہ نہیں۔
جی ہاں، ادھر ادھر سے کچھ سنا تھا۔
بہرحال تمام مشکلوں کے ساتھ ہم نے یہ کام شروع کیا اور تقریباً 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں۔
اچھی بات ہے، تو آپ نے مینوفیکچرنگ شروع کر دی۔ ہاں تو پھر
شروع میں سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جب سے مینوفیکچرنگ شروع کی ہے مشکلیں بھی شروع ہو گئیں۔ کپڑے مہنگے ہونے لگے، طے تھا کہ مجھے لون ملے گا، لیکن اب تک آج کل کر رہے ہیں۔ داریوش نے بھی قرض چکانے کے لیے کچھ پیسے سود پر لے لیے اور اس طرح سے بہت مقروض ہو گئے، اور اس وقت بھی آپ ہی پر ہماری تمام امیدیں ہیں۔
اس وقت داریوش کہاں ہے؟
حوالات میں، تھانے میں۔
عجیب بات ہے، واقعی نہیں معلوم تھا۔ کب سے؟
تقریباً 24 گھنٹے سے، اسی وقت سے پیسے کی تلاش میں پھر رہی ہوں میں، اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ اگر ممکن ہو تو بات کریں کہ جلد از جلد ہمیں لون مل جائے، یا جیسا آپ کہیں۔
لون کی بات تو منتفی ہے، چونکہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ قرض کتنا ہے پورا؟
اس وقت تو 2 کروڑ تومان کی وجہ سے حراست میں ہے، لیکن امپلائیز اور کاریگروں کی تنخواہ اور تمام قرض ملا کر 18 کروڑ تومان بنتے ہیں۔
آپ فیکٹری کے کاغذات، پروڈکشن کی مقدار اور فیکٹری میں مشینوں کی لسٹ میرے پاس لے آئیے، شاید کچھ کر سکیں۔
کیا واقعی کچھ ہو سکتا ہے؟
کچھ کہہ نہیں سکتا، مطلب یقین نہیں ہے۔ آپ مجھے کل تک کا موقع دیں۔ سب سے پہلے 2 کروڑ اکٹھا کرنا ہے کہ داریوش کو کم سے کم باہر نکال سکیں وہاں سے۔ فیکٹری کے کاغذات کب لائیں گے آپ؟
جب آپ کہیں۔
آپ کل دوپہر کے قریب مجھے فون کیجیے۔
جی ضرور۔
کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔
آپ کی محبت میں کبھی نہیں بھول سکتی، کل ضرور حاضر ہوں گی۔
میرا سلام اپنی والدہ کو ضرور۔
جی ضرور۔ اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔ دبئی آفس فون لگاؤ، شیخ جمال سے بات کرنی ہے۔ کپڑے کی پروڈکشن، کپڑا۔
حسام کہاں ہو بھائی؟ میں آ گیا۔ حسام
क्या है, आधी रात गए इतना शोर मचाए हुए हो?
माफ करना भाई।
अब कैसी माफी?
जगा दिए क्या?
ये जिस सूर इसराफिल में तुम फूंक रहे थे उससे तो मुर्दे भी उठ खड़े हो जाएं। मुझे तो छोड़ो, कोई खास बात?
तुम ठीक तो हो ना? कोई बात तो नहीं?
जी हाँ, सब ठीक है।
चाय तैयार है?
जी अभी गर्म होगी। तेरान कब पहुंचे?
कम, बस अभी।
सब खैरियत तो है?
अब क्या बताऊं हिसाम, कुछ नहीं भाई। इतनी पकड़ दकड़ और इतना आना जाना और आखिरकार एक आध स्मगलर भी पकड़ा गया।
ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। बाज पैसे के भूखे हैं, बाज शोहरत के भूखे हैं, बाज कुर्सी के और बाज सियासत के।
और हम तो सबसे बदतर हैं क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे साजोबाज के भूखे हैं। तुम बजाओ के बहुत दिनों से तुम्हारी और तुम्हारे साज की आवाज नहीं सुनी।
दिल को मेरे आजमाया किसने किसने तीर से, डरता हूँ चेहरे उतर जाएंगे इस तफसीर से। अहले हिम्मत के मिटा करते नहीं आसारे इश्क, नजद लर्जे में है मेरे नाले शबगीर से। इस तरह से हम रहे हैं करबला के इश्क में, हो गए मानूस अब तो दस्तों पा जंजीर से। ये बताओ क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है?
जब तक तुम ऐसे बजाओगे नहीं।
ठीक तो फिर मेरी ही तरह हो, फिर बजाते हैं।
जनाब प्लीज आप मेरा जरा इंतजार कीजिए, मैं भी आती हूँ।
अरे नहीं भाई, अभी तक नहीं बेच पाए हैं, हम आपसे शर्मिंदा ही रहते हैं।
अच्छा,
यकीन कीजिए।
तो फिर ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है?
वाह वाह, ये सब आपके हैं या बाहर के हैं? मैंने तो कहा ही था अपनी डिजाइन चेंज कीजिए, अब मेरी बात सुनिए।
जी आपने कहा था कि अपने डिजाइन चेंज करें, लेकिन जब से ये डिजाइन आपके हवाले हुए हैं बदले गए हैं।
तो इससे क्या होता है, अब क्या हुआ है? किसी दुकानदार ने डिजाइन चेंज कर दी होगी। हाँ इस तरह बेहतर बिकेगा, आप परेशान ना हो।
अहमदी साहब आप क्या मुझे बच्चा समझते हैं? एक दुकानदार चार पैसे के लिए नए डिजाइन करवाएगा? नहीं जनाब, ये काम डिस्ट्रीब्यूटर का।
बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, हिसाब किताब तो खूब जानती हैं। असल में हमने ही ये किया था कि देखें कैसे लगता है। अच्छे लग रहे हैं ना?
जी बहुत अच्छे लग रहे हैं।
हमारा काम ऐसा है, दूसरों की मदद करते हैं, अब क्या किया
अच्छा
जाए?
जब आपने छापे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे ना?
जिम्मेदारी?
यही जो आपने छापा है।
हमने? मैडम हम एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यह हमारी मेहरबानी का सिला।
क्या मतलब है जनाब, क्यों इनकार कर रहे हैं अब आप? मुझे तो आपकी गलती की सजा नहीं भुगतनी चाहिए ना, क्यों कोर्ट मुझे बुलाए?
मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसा हो तो बुरा नहीं होगा, मैंने मशवरा दिया था। आपको अगर याद हो तो उस बार जब आई थी तो मैंने आपसे कहा था या नहीं, हम दूसरे के माल में हाथ नहीं लगाते, हम ऐसे नहीं हैं, खुदा गवाह है।
कोई बात नहीं अहमदी साहब, अब आप खुद शराफत से कोर्ट जाएंगे या वहां से बुलावे का इंतजार करें?
अरे मैडम मैडम आइए, अपना बाकी भी माल लेती जाइए, कोई मुसीबत खड़ी होने से पहले।
चलिए जनाब, अगर खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, कल दोपहर तक इंशाल्लाह घर में होंगे।
तुम्हें यकीन है मरियम?
तो और क्या यकीन है, कितनी बार कहूँ। कुछ देर पहले क्यानी के पास गई थी, वादा किया है कि कल तक 2 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा और फैक्ट्री
कागजात भी मांगे हैं जो कल उनके पास ले जाऊंगी मैं।
फैक्ट्री के कागजात किस लिए?
मुझे नहीं मालूम किस लिए, शायद इसके जरिए कोई लोन लेना चाहते हैं। मजबूर होके मैं क्यानी के पास गई,
शायद यही एक रास्ता बचा हुआ था। ठीक है,
किसी चीज की जरूरत तो नहीं है कि ले आऊं?
नहीं, तुम अभी कहाँ जाओगी?
तुम्हारी अम्मी के यहाँ, बेचारी बहुत परेशान थी, तुम्हें पूछा करती हैं और मैं हर बार कहती हूँ कि मसरूफ है। आज रात ही खाने पे बुलाया है, समझ में नहीं आता क्या कहूँ।
ये मत कह देना कि मैं यहाँ हूँ।
नहीं भाई, अच्छा वहाँ बता दिया, वरना शायद मैं उनसे जरूर कह देती।
सनाज को प्यार करना
जरूर।
खुदाफिज।
खुदाफिज।
वो अब तक क्यों नहीं आया यहाँ? क्या तुमने उसे नहीं कहा था कि खाना यहाँ खाए?
क्यों नहीं कहा था? हो सकता है किसी काम में फंस गया हो।
मैं उसे एक फोन करके आती हूँ, शायद फैक्ट्री में हो।
नहीं नहीं नहीं, फैक्ट्री में नहीं है, कहा तो अपने एक दोस्त के पास गया।
क्या हो जाता अगर एक फोन मुझे कर लेता और कहता कि आज मैं नहीं आ सकता? बेटा, अपने दोस्तों के साथ उसे ज्यादा रहने ना दिया करो।
अम्मी, कल उस आदमी को बाबा से क्या काम था?
ए मेरी बेटी, मैंने कई बार तुमसे कहा कि खाना खाते वक्त बोला नहीं जाता। अरे जब मुंह भरा हो तो बोला नहीं जाता है, अपना खाना खाओ।
क्यों बच्चे से ऐसे बात कर रही हो?
बार बार बोले जा रही है, अपना मुंह खोलो। गंदी बच्ची, खाओ अपना खाना।
मरियम बेटा, इंतजार कर लेती, दारियूश आ जाता तब जाती।
मैं अम्मी चाबी भी नहीं ले गए, शायद बाहर ही खड़े रह जाएं इसलिए।
ठीक है बेटा, जब आए तो फोन पे बात करवा देना।
जरूर, हो सकता है आज रात देर में पहुंचे, कल सुबह मैं बात करवा दूंगी आपसे।
ठीक है बेटा, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज अम्मी।
खुदा
हाफिज। खुदा हाफिज।
शुक्रिया।
अमीन नहीं आ रही है, मुझे गोद में ले लीजिए।
अब तो पहुंच गए बेटा। अब तो पहुंच गए ना बेटा, मुझे जूता उतारने दो, तुम सो जाओ जाके। एक मिनट, जूते तो उतार लेने दो, ऐसे कैसे सो पाओगे? आओ बेटा सो जाओ, शाबाश सो जाओ, शाबाश। कौन है?
अभी तक खुसरवी साहब नहीं आए क्या?
आप?
मैं पैराग हूँ, हो सकता है घर पर हूँ और बाहर नहीं आना चाहते।
नहीं है जनाब, आज रात नहीं आएंगे।
तो भाग गए क्या?
क्या मतलब है आपका?
उनसे कहिए कि मैं यहीं पर रुका रहूंगा जब तक के बाहर नहीं आते।
जैसी आपकी मर्जी।
मैं ठीक हूँ, आप देखती रहिए बस।
अस्सलामु
السلام علیکم جی, فرمائیے.
وعلیکم السلام, نیکبین ہوں, کیا کیانی صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟
کیانی صاحب اس وقت نہیں ہیں, لیکن آپ کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ آپ کا انتظار کریں گے.
جی اچھا, بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.
خدا حافظ.
ٹیکسی.
یا اللہ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟
ٹھیک ٹھاک.
کیا کیا, جو دوائیں کہیں تھیں ملیں؟
جی بالکل, یہ لیجئے.
کہاں سے لائے؟
ہلال احمر کے دوا خانے سے, لیکن تعلقات کی بنا پر. ارے جلدی نہیں ہے, بعد میں لے لوں گا, کہیں بھاگوں گا بھی نہیں.
پکڑو بھائی, زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ, ہر بار ہماری اسی پر بحث ہوتی ہے. بس یہی کیا کم ہے کہ تم اپنی محنت کرتے رہتے ہو. اور ہاں, آج کی کیا خبر ہے؟
وہ جو اسمگلر جو تھا نا, جو کوما میں تھا,
تو
وہ ہوش میں آ گیا ہے.
کس ہاسپٹل میں ہے؟
پولیس کے ہاسپٹل میں ہے, جہاں حسام کے ساتھ جایا کرتے ہیں آپ.
اچھا, تو ایک چکر لگا کر میں دیکھ کر آتا ہوں اسے, شاید مجھے کچھ مل جائے. البتہ مشکل ہے کہ وہ کام کا آدمی ہو.
آزمانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, میں چلتا ہوں پھر. خدا حافظ.
خدا حافظ.
ہیلو.
ہلو کیانی صاحب, میں یاور بول رہا ہوں.
یہ کون سا وقت ہے فون کرنے کا؟
وہ تھا نا بیوقوف سا آدمی مسیب,
اسے ہوش آ گیا ہے. تو میں کیا کروں پھر؟
مجھے پہچانتا ہے,
اسٹور کا ایڈریس بھی اسے پتا ہے.
اب کیا کرنا چاہیے؟
دیکھو یاور, اپنے اور اس کے درمیان سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہوگا, سمجھے؟ کسی ایک کو.
کیسے ہیں ناصر صاحب آپ؟
جاؤ گاڑی سٹارٹ کرو, میں آتا ہوں.
جی اچھا, میں جا رہا ہوں.
تم تو ابھی تک تیار نہیں ہوئے, جلدی کرو بھائی.
ہم تو صرف وہاں منگل کو جاتے تھے.
جلدی کرو, زیادہ مت بولو.
ارے میرے سارے پروگرام بگاڑتی ہے. ارے میرا ایک شاگرد آنے والا ہے, اگر دیکھے کہ میں نہیں ہوں تو بہت برا ہوگا.
اپنے شاگردوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کرو, انہیں خود ہی محنت کرنے دو نا میرے بھائی.
پھر شروع ہو گئے, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اور تم ہمارے شاگردوں کی پیٹھ پیچھے.
زیادہ مت بولو, چلو.
کیا مطلب ہے مت بولو؟ شاگردوں کے سامنے میری بے عزتی کروانا ہے کیا؟ وعدہ خلافی ہوگی. نہیں ہوگی, نہیں جاؤں گا, نہیں.
زیادہ سے زیادہ ایک پرچی لگا دیں گے کہ معذرت کے ساتھ تم لوگ کل آنا. ٹھیک ہے؟
جی نہیں. کہاں سے ٹھیک ہے بابا, بری بات ہے, سمجھتے کیوں نہیں ہو؟
تم جتنا اپنے کالج کے شاگردوں کے بارے میں سوچتے ہو, اگر اپنی صحت کے بارے میں اتنا ہی خیال کرتے تو میں اتنی مصیبت میں نہ پڑتا.
اچھا یہ بتائیے بھائی, منگل میں پرابلم کیا تھی جو اب
آپ جلدی نکلو گے کہ نہیں؟
اچھی مصیبت ہے.
کتنا بڑبڑاتے ہو تم.
ٹھیک ہے, وقت ہو گیا ہے, اب جا سکتی ہو. کیوں بیٹھی ہو, جلدی کرو.
ٹھیک ہے, چلاؤ مت. لیجیے.
ٹھیک ہے ترویجی صاحب؟
جی بالکل ٹھیک ہے.
مجھے دیجیے تاکہ اسے درج کر دوں.
میں واقعی شرمندہ ہوں سبھی صاحب, میں نہیں چاہتا تھا ایسا ہو.
یہ آپ کی خدمت میں, اس جگہ پر دستخط کریں.
مریم، کوئی ایسی جگہ جانا چاہ رہا ہوں جہاں تازہ ہوا ملے مجھے.
اچھی بات ہے، مجھے بھی تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں.
تو پھر چلتے.
چلو.
اوف اوف اوف، میں مرا جا رہا ہوں. اوف اوف، ارے کوئی مدد کرے، ڈاکٹر کہاں ہو؟
اس نے ایسا کیوں کیا؟
جلدی چلو.
ختم کر دیا؟
ہاں ہاں.
کہاں جا رہے ہو؟ یہی تھا بھائی.
میں متوجہ نہیں ہوا، اس لڑکی نے میرا ذہن ہی گھما دیا. ایک معافی تک نہیں مانگی اس نے.
علی رضا، یا اللہ.
آ جائیں، اندر آ جائیں.
السلام علیکم ڈاکٹر.
السلام علیکم. اسمگلروں کے لیڈر.
اسمگلروں کا دشمن.
کیا فرق پڑتا ہے ہمارے حسام میاں کیسے ہیں؟
جانا ہی والا ہے.
جب تک تم زندہ ہو تب تک میں بھی زندہ رہوں گا.
بات مت کرو، خوش آمدید.
شریفی صاحب،
اور سناؤ، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟
شکریہ.
ٹھیک ہو؟ अच्छा हाँ, तुम्हारा एक दोस्त भी मेरे यहाँ एडमिट है।
वही स्मगलर और कौन?
इत्तेफाक से मैं उससे मिलना चाह रहा था। डॉक्टर, हिसाम का काम कितनी देर का है?
अब मैं समझा डॉक्टर कि जनाब आज मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। ये बात थी
इवादी साहब, ये हमारे हिसाम साहब तकरीबन आधे एक घंटे तक हमारे मेहमान हैं। आप अगर जाना चाहें तो चले जाएं।
किस कमरे में है?
पांचवे फ्लोर पर आखिरी कमरा।
अच्छा, तो मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ।
कहाँ? इंजेक्शन लाए हो अपने साथ?
भूल गया डॉक्टर, इसमें है। तुम खुद ही इसको निकाल लेना।
ठीक है, वहीं रख दो।
मुझे ऐसे मत देखो, अभी वापस आ रहा हूँ ना।
हाँ, तो हमारे प्रोफेसर साहब कैसे हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया।
मेहरबानी है तुम्हारी।
नर्स, नर्स,
हाय हाय, क्या दिन थे वो भी, याद है ना तुम्हें?
नहीं, सिर्फ तुम्हें याद है। क्या वो दिन मैं भूल सकती हूँ जिस दिन तुम मुझे देखने आए थे? अजीब से लग रहे थे।
बेवकूफ लोगों जैसा लग रहा था ना?
हाँ हाँ, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो अपनी माँ के सामने इतराफ गुनाह करना चाहते हैं।
लेकिन अब मैं अपनी गलतियों का इतराफ करना चाह रहा हूँ।
कैसा इतराफ?
ये कि अब बर्दाश्त की सकत नहीं है। पिछले दो दिनों में जब मैं वहां था, मुझे लग रहा था कि वो दीवारें मुझे खा जाएंगी। लग रहा था कि वो दीवारें मुझसे ज्यादा करीब होती जा रही हैं। मरियम, बाज लोग कैसे इतने बरसों तक वहां पे रह सकते हैं?
पता नहीं। अरे ये सब बातें छोड़ो, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब क्या सोच रहे हो?
इत्तेफाक से मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ शुरू हुआ है। तुम्हारे ऊपर 14-15 करोड़ का कर्ज हो, और हर लम्हा ये सोचो कि कोई वारंट पेपर लेकर तुम्हारे पास आ जाएगा, तो फिर यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैंने सोचा था कि अगर मुझको इससे छुटकारा मिल गया तो ऐसा कुछ करूंगा कि कभी गरीबी का फिर मुंह ना देखना पड़े।
अगर फैक्ट्री का काम प्रॉफिट में गया तो वो मौका जरूर आएगा।
फैक्ट्री? मरियम, जितनी मुसीबतें हम झेल रहे हैं इसी फैक्ट्री की वजह से। अब मुझे लगता है कि फैक्ट्री को बेच देना चाहिए ताकि सुकून मिल जाए।
बेच दे कारखाने को? अब ये बात तो गलत है। फैक्ट्री को बेचने की बात दिमाग से निकाल दो। मुझे ये पता नहीं चलता कि तुम हमेशा असली बात से क्यों हट जाते हो। चलो सानाज और अम्मी इंतजार करेंगे।
लेकिन मरियम, इस बात पर जरूर गौर करना।
हाँ अच्छा, चलो बाद में सोचेंगे।
हेलो जी, फरमाइए। जी जी, वो अभी फोटो स्क्रैच वाले कमरे में है।
देखो, दोनों आंखों का फासला जरा ज्यादा करो। हाँ ठीक है, बस यही है। इसका प्रिंट एक ले लो।
ठीक है, जरूर।
बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्मिंदा हूँ।
3 घंटे से मैं तुम्हारा मुंतजर हूँ।
अरे भाई मैंने माफी तो मांग ली मेरे भाई, यहाँ क्यों रुके रहे, घर चले जाते ना।
अगर मेरी चाबी मुझे दो तो इस वक्त भी मैं जा सकता हूँ।
तो ये चाबी तुम्हारी है, ले लो। शुक्रिया। हैसाम, यही लड़ाई तो मुझे पसंद है।
और मुझे तुम्हारी ये बेवकूफी। बेवकूफ।
गलती मेरी थी एहसाम, जब पोर्ट से आया था तो उसी वक्त मामला छोड़ना नहीं चाहिए था।
अब अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। जब तक वो जिंदा था उस वक्त तुम समझते थे एक मामूली स्मगलर से तुम्हारा साबका पड़ा है।
एक वाहि सिराम खो चुके हैं।
गलती कर रहे हो। अगर उस औरत को जो मुसैब की कातिल है पकड़ सको तो उस वक्त कुछ हो सकता है।
मुझे यकीन नहीं है कि उसी लड़की ने यह काम किया होगा, सिर्फ एक अंदाजा है।
मंतकी है, वो इतने प्रोफेशनल हैं कि अपना काम एक औरत से करवाया है जिस पर हॉस्पिटल में किसी शक भी नहीं होगा।
देखो तो एक हवा के इंजेक्शन की वजह से सब कुछ खराब हो गया।
इंसान भी अजीब होते हैं, एक हवा के इंजेक्शन से मरता है और एक हवा ना पाकर,
और कोई मेरी तरह भूख से मरता है। चलो देखें कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। आमलेट खाओगे ना?
नो 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 नो, अंडा।
मुझे पता है कि भूखे हो तुम।
अंडा नहीं, मैं पनीर रोटी ही खाऊंगा।
माफ कीजिएगा।
कोई बात नहीं।
मैं कह रहा था कि मेरी इस तजवीज़ पर अमल करने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी यकीनन। देखो दारियुश, मैं ख़ुद प्रोडक्शन का मुआफ़िक हूँ, लेकिन इस इक्तसादी सूरत हाल के बाद किसी प्रोडक्शन के काम को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि इसके साथ तजारत भी ज़रूर करो। मैंने आपकी फैक्ट्री के कागजात पूरी तरह देखे हैं। इस बात का इम्कान है कि इसके तहत आप वक्ती तौर पर कपड़ा इम्पोर्ट करने का काम शुरू कर दें।
वक्ती तौर पर का क्या मतलब हुआ?
वक्ती तौर पर एक इम्तियाज है आप जैसे लोगों के लिए जो प्रोडक्शन का काम करते हैं। कस्टम वाले उन्हें इसकी इजाजत देते हैं कि अपना जरूरी सामान इम्पोर्ट कर सकें, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसे असली शक्ल देकर एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर।
देखिए मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फैक्ट्री के बारे में जैसा भी आप कहें वही होगा।
तो फिर हम पार्टनर बन सकते हैं?
जैसा आप समझें।
अपने दूसरे कर्जों के बारे में मत सोचना ज्यादा, ये काम करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आपकी मोहब्बतें के ज़ेर साया।
देखो दारियुश, ऐसा है यहाँ मेरा काम बहुत ज़्यादा है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। फैक्ट्री के बारे में मत सोचो, चूंकि तुम्हारी बीवी उसे आराम से चला सकती है, मैं समझता हूँ।
क्यानी साहब, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं?
देख मेरी मीटिंग चल रही है, तुम कब काम सीख पाओगी?
माफ कीजिएगा लेकिन बहुत अहम है।
बस अभी हाजिर होता हूँ।
कोई बात
नहीं। यावर आया है।
मुझे यही बताने के लिए बाहर बुलाया है? आया है तो आया है, क्या हुआ आखिर?
कुछ जरूरी काम है, कमरे में बैठा है, लगता है कुछ प्रॉब्लम पेश आई है।
मैं चाहती हूँ जिस मौजू की तरफ मैंने इशारा किया है सब गौर करना। देखो मैं पहले भी कह चुकी, हम सब कि असल मुश्किल यह है कि हमारे कपड़ों के डिजाइन बाहर के हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे कपड़े डिजाइन किए जाएं जो हमारे कल्चर के मुताबिक हों, अच्छे लगें और जवानों को भी पसंद आएं, और सबसे अहम यह है कि बाहर के प्रोडक्ट से भी ना मिलते हों।
नेकबिन साहिबा, मुझसे कुछ काम था
जी। जरा एक मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। आप मेरी मदद पर भरोसा कर सकती हैं और अपने डिजाइन आमादा करने के लिए, और मैं देखती हूँ कि आप लोग क्या करती हैं। हैं,
कैसी हैं मैडम?
शुक्रिया। महमूदी साहब, आप याकूब अहमदी को तो जानते ही होंगे।
जी जी, वही जो कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूटर है।
शाबाश, वही। जरा एक मिनट मेरी
जी। क्यों नहीं
महमूदी साहब, मैं चाह रही थी कि तहकीकात करें और पता चलाएं कि इस शख्स की कोई गलती निकाली जा सकती है। पिछली बार जब उसके पास गई तो उसने कबूल किया कि वो गलतियां उसकी थी, लेकिन जब सुना कि कोर्ट तक मामला पहुंचने वाला है तो हर चीज से इनकारी हो गया।
अच्छा, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि शायद स्मगलिंग करने लगा है।
अच्छा,
हाँ आप चाहें तो मैं कन्फर्म भी कर सकता हूँ।
अच्छी बात है, जरूर ये काम करना।
ठीक है। अच्छा, खुसरवि साहब आए।
शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाओगे।
इत्तेफाक से इसलिए आया हूँ ताकि जल्दी चले जाऊँ।
खैरियत तो है ना?
हाँ, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। अच्छा मरियम, मैं सोच रहा था कि हम जितना प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं उतना ही उसके बेचने के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे माल को अहमदी जैसा इंसान क्यों डिस्ट्रीब्यूट करे? कियानी साहब से बात हुई है कि तिजारत करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं।
ये तो अच्छी बात है।
उन्होंने मुझे अपने पास काम के लिए बुलाया है।
तो क्या यहाँ मैं अकेली रहूंगी?
तुम अकेली कहाँ हो? मैं और कियानी साहब तुम्हारी मदद करते रहेंगे, लेकिन फैक्ट्री की जिम्मेदारी और मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में रहेगी। हैंडल कर लोगी ना?
तो अब मैं क्या कहूँ, तुम तो अपना फैसला कर ही चुके हो।
ऐसे क्यों कह रही हो मरियम? इंसान का दिल तोड़ देती हो, तुम्हें एतराज है?
नहीं, लेकिन मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा।
ये कियानी मुझे बहुत पसंद आने लगा है। मतलब मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा काम मेरे लिए करेगा। 20 मिलियन कोई यूं ही किसी बंदे को दे दे?
देखो, ये यूं ही नहीं था। इसके लिए चेक भी लिया है और फैक्ट्री में पार्टनर भी बना है, और तुमको भी मुझसे ले रहा है, ये कम है?
मैं समझता था कि एक औरत सिर्फ औरत से ही जेलस होती है।
तुम्हारी गलती थी, क्योंकि औरतें हर उस चीज से जो उनके शोहर को ले ले हसास है।
चलो गाड़ी में बैठो।
सुना नहीं तुमने?
मुझे कहां ले जा रहे हो?
जल्दी ऊपर बैठो, जल्दी।
तुम क्यों इतने बेवकूफ हो? इस लड़की को यहां किस लिए आओ आखिर तुम? क्या मुझे बर्बाद करना चाहते हो? जल्दी दोनों यहां से रफू चक्कर हो जाओ।
बेचारी बहुत डरी हुई थी, मैंने सोचा कि उसे अपने साथ ही रखूं तो अच्छा है, कहीं गड़बड़ ना कर डाले।
मैंने तो कहा था कि एक प्रोफेशनल आदमी इस्तेमाल करो।
प्रोफेशनल को प्रोफेशनल पैसा भी चाहिए। अगर देर लगाते तो मुसैब अपना काम कर चुका होता।
ये अपने आदमी को हवाले करो, इसे यहां से निकलवाओ।
खतरनाक काम है।
गौर से सुनो यावर, तुम्हारी खैर नहीं अगर मैंने सुना कि लड़की तेहरान टहल रही है। यह जो पैसा दिया है उसको अगर तुमने अपनी जेब में रख लिया।
नहीं सर, मैंने कुछ और ही सोचा।
तुम्हारी सोच की मुझे कोई जरूरत नहीं। ऐसी जगह छुपाना कि इसकी आवाज ना निकले जब तक कि मैं उसका काम मुकम्मल ना कर लूं।
जी हाँ।
قرارم نبود تو بی خبر بری، من خسته شم که تو بی هم سفر بری. نه نه این قرارم نبود من رنگ شب بشم، تو سر سپردشی من جون به لب بشم.